प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं वितु शासनम्। बोलिए भगवान महावीर की जय। बोलिए गुरुवर क्षमा सागर जी महाराज की जय। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं प्राणिक हीलर हूं। ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि बिना छुए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली कोई डिजीजेस हो उसको क्लियर करती हैं। तो मेरा हमेशा से सब्जेक्ट सेल्फ हीलिंग रहा है, किस तरह से हम अपने ही सेल्फ की हीलिंग कर सकते हैं। और ये ध्यान एक प्रक्रिया है जिससे अपने सेल्फ की हीलिंग होती है। आज का सब्जेक्ट जो है वो है ध्यान दैनिक जीवन में, मेडिटेशन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले तो अपन समझें कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। मेडिटेशन या ध्यान से मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से सुने इस चीज को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट मेडिटेशन मींस। कहीं एक बिंदु पर, कहीं एक जगह पर जब बहुत ज्यादा एनर्जी एकत्रित हो जाती है तो उस क्षण में उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान को कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, जहां पर एक प्रवाह चलता रहे किसी कॉन्सेंट्रेशन का या किसी एक चीज पर अटेंशन का। एक नदी होती है, वो जो नदी, उसकी इंटेंसिटी, उसका करंट, उसका फ्लो, उसको अगर अपन डिवाइड कर दें, पांच, उस नदी को पांच नदियों में डिवाइड कर दें, तो क्या ये जरूरी नहीं है वो नदी ओशन तक पहुंच सके। हो सकता है वो नदी बीच में जाते जाते ही सूख जाए, लेकिन वो जो एक नदी है विथ इट्स ट्रिमेंडस पावर्स ऑफ जनरेटिंग करंट, वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है? बहुत विशाल रूप में किसी इलेक्ट्रिक करंट को या एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है वो एक नदी, जो कि सम्मिलित रूप है, विभाजित नहीं है। उसी प्रकार दैट नदी इज नथिंग बट अवर ओन सेल्फ विद इन आवर सेल्स, जिसका टर्म सोल भी कहते हैं। If the energy of this soul is divided into small, small parts, small, small separations, we are unable to utilize the energy of the soul for our own spiritual upliftment. तो इस नदी को, अपने भीतर जो नदी बहती है उसको एकत्रित करना, अपने मन को चारों तरफ से खींच करके अपने ही अंदर लाना, ताकि उस ध्यान की स्थिति पर पहुंच सके अपन, जहां पर स्वयमेव ही द फीलिंग ऑफ लाइफ फोर्स विद इन अस फील कर सके 24 आवर्स। एवरी डे इन 24 आवर्स हम जितने जितने काम करते हैं, जितने जितने लोगों से मिलते हैं, उन सब में हमारी एनर्जी को हम वेस्ट करते हैं या टेम्पररी रूप में देते जाते हैं। उस एनर्जी को सबके साथ रहते हुए भी, सब सिचुएशंस में पड़ते हुए भी, सभी प्रकार का काम करते हुए भी, हमारे जीवन में हम कैसे अपने ही पास एकत्रित करके रख सकते हैं, ये विधि होती है ध्यान की। अच्छा, मैं एक प्रश्न आप लोगों से ही करती हूं। अपन सब रोज निरंतर 24 घंटे किसी ना किसी ध्यान में लगे रहते हैं, क्या मुझे आप लोग कोई एग्जाम्पल्स देंगे कैसे? इनका कहना है कि जहां कॉन्सेंट्रेशन है, अटेंशन है, वहां पर अपने आप ध्यान हो रहा है। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर वो ध्यान में लगे हुए हैं, जैसे गृहिणी कार्य कर रही है घर के, तो वो अपने आप उस कॉन्सेंट्रेशन में लगी हुई है, ध्यान में लगी हुई है। लेकिन और भी चीजें हैं जो कि हम लोग निरंतर 24 घंटे कर रहे हैं, थोड़े और अपने तक आए, अब दूसरों की तरफ भी अपने तक आए। देखिए ध्यान मतलब ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है ध्यान करना, हम नहीं कर सकते, हमसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता, हम माला फेरने बैठते हैं तो दिमाग हमारा इधर उधर घूमता है, हर जना इंटरनली ये फील करता है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वी कैन नॉट डू इट, नॉट सो इजीली, वी नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू डू इट एंड ऑल दोज थिंग्स. लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जब अपन गुस्सा कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? Exactly, we are concentrating on negative vibrations which are getting on us because of the outer circumstances. वो भी एक ध्यान हुआ. उसी प्रकार से जब कोई romantic attraction में पड़ते हैं तो continuous क्या चिंतन चलता रहता है कि वो person मेरी life में आ जाए. और ये कॉन्सेंट्रेशन एक दिन का नहीं होता, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है दो दिन का, तीन दिन का, चार दिन तक का. जब तक वो इन्फैचुएशन बना रहता है, उस पूरे पीरियड ऑफ इन्फैचुएशन में अपना ध्यान निरंतर लगा रहता है. जब किसी चीज के लिए किसी से बदला निकालना हो तो क्या वो सिर्फ एक घंटे का ध्यान होता है? वो ध्यान महीनों तक चल सकता है और महीनों तक हम करते हैं, पूरा अटेंशन हमारा कि किस तरह से हम उसको नीचा दिखा सकें. इसी प्रकार के ध्यान हम सालों सालों तक करते रहते हैं. आज हम किसी एम ऑफ लाइफ, कोई गोल, कोई वर्क के लाइफ के गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं, क्या आज तक की 35 साल की लाइफ, 40 साल की लाइफ हमने किसी ध्यान में निरंतर नहीं निकाली? लेकिन क्या डिफरेंस है, ये जो हमने किया बहुत अनकॉन्शियसली करा, कॉन्शियसली नहीं करा. इस प्रकार का ध्यान हम निरंतर करते रहते हैं और इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो एवरीडे लाइफ में होते हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू अस व्हेन इट गोज अवे फ्रॉम अस. जो चीज हम पजेस करते हैं वो टूट करके गिर जाती है तो क्या ध्यान रहता है कि वो चीज मुझे वापस मिल जाए किसी तरह से, वो व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आ जाए. ये निरंतर जो ध्यान चलता रहता है. दूसरा ध्यान क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो हमारे पास में हो जो हमें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, तो हमारा निरंतर ध्यान चलता रहता है कैसे इस चीज से हम दूर हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल अ बैड रिलेशनशिप, कैसे किस प्रकार से हम इस व्यक्ति को टाल दें, इस व्यक्ति के सामने से नहीं रहें, इस व्यक्ति से बातें नहीं करें. इस प्रकार का पूरे लाइफ टाइम तक अगर कोई बैड रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाए, इस प्रकार का ध्यान निरंतर पूरी लाइफ टाइम तक चलता रहेगा. और ध्यान होता है एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फ्यूचर, बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस जो फ्यूचर से रहते हैं. पूरी एक लाइफ टाइम हम बिता देते हैं उसी ध्यान के अंदर अनकॉन्शियसली. ये सब ध्यान क्या कर रहा है, जब हम गुस्सा हो रहे हैं, पांच मिनट बाद जब हमको रियलाइज होता है तो हमें दुख होता है. उसी प्रकार से जब कोई प्रिय वस्तु हमसे दूर चले जाती है तो हमें दुख होता है, कोई अनिष्टकारक चीज हमारे साथ हो जाती है तो हमें दुख होता है, कोई चीज फ्यूचर में हमें चाहिए वो हमें अभी नहीं मिलती तो हमें दुख होता है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ मेडिटेशन वेयर व्हाट वी आर गेटिंग एज एन एंड रिजल्ट इज सफरिंग, सैडनेस, सोरोनेस इन आवर लाइफ. एक और प्रकार का ध्यान होता है जो हम निरंतर 24 आवर्स में कभी ना कभी करते रहते हैं, जिसमें से हम प्लेजर डिराइव करते हैं. कोई एग्जाम्पल आप देंगे? अपन सब करते हैं उस चीज को, गॉसिपिंग. गॉसिपिंग में क्या हो रहा है, किसी एक व्यक्ति को हम या तो नीचा दिखा रहे हैं अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए. वो प्रोसेस कंटिन्यूस उस दो घंटे के बैठक में चलता रहता है. इसमें कितना आनंद मिलता है, प्लेजर कितना मिलता है, ये भी एक मेडिटेशन है. इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों को हर्ट करने में मजा आता है, कंपटीशन से मजा आता है, किस प्रकार से सामने वाले को कॉम्पीट करके हरा दें. एंड जस्ट फील दिस थिंग, कि इस प्रकार का मेडिटेशन हम एक घंटे से भी ज्यादा, एक दिन से भी ज्यादा, एक महीने से भी ज्यादा कर लेते हैं और हम बोलते हैं हमें ध्यान करना ही नहीं आता. सो वी रियलाइज दैट वी हैव द इननेट कैपेसिटी टू मेडिटेट बट द ओनली थिंग इज वी आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली. इफ वी आर कॉन्शियस ऑफ इट तो जस्ट टेल मी, डोंट वी वॉन्ट टू डू मेडिटेशन फॉर इंक्रीजिंग आवर सोल्स पोटेंशियल एंड एनर्जी एंड नॉट लेटिंग इट वेस्ट लाइक दिस? ये प्रश्न मैं आप लोग से पूछती हूं. क्या हम नहीं चाहेंगे कि कॉन्शियसली अपने इस ध्यान को एक ऐसी जगह लगाएं जहां पर हमारी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो करके हमारे अंदर ही रहे और हमें वो पोटेंशियल दे, चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे किसी रिलेशनशिप के अंदर हों, हम उसे पूरी तरह से जी सकें अपने ही अंदर हो करके, अपने आप को लूज करके नहीं, अपने आप को इन्फ्लुएंस करवा करके नहीं. सो अपन रियलाइज करते हैं इस प्रकार का जो मेडिटेशन है वो हमें सफरिंग देता है, सोरोनेस देता है, प्लेजर्स देता है, ऐसे प्लेजर्स जो बहुत टेम्पररी रहते हैं, घंटे भर के, दो घंटे भर के, दिन के, महीने के, पर वो खत्म हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई प्रोसेस या घटना हमारे लाइफ के अंदर शुरू होने लगती है. तो ध्यान का रियल मीनिंग होता है एक कंटिन्यूटी ऑफ द जॉयस स्टेट विद इन अस. ये है ध्यान का मतलब. इसे कहते हैं प्रशस्त ध्यान. ऑस्पिशियस ध्यान वही होता है. कैसे अपन डिफ्रेंशिएट करें कि मेडिटेशन कौन सा सही है कौन सा गलत है? ऐसा मेडिटेशन जो मुझे मेरी ही आंखों के सामने प्रसन्नता दे, जो मुझे मेरे ही आंखों के सामने अपने आप को सेल्फ कंटेंट में बना सकूं, वो ध्यान प्रॉपर ऑस्पिशियस ध्यान होता है. तो एक चीज आप नोटिस करिए, जहां कहीं अटेंशन होता है वहां ध्यान रहता है. अब अटेंशन कहां है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो अपना ध्यान वहां लग गया. तब कॉन्शियसली इस अटेंशन को अपने आप को समझें कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे प्रसन्नता दे सकती है, क्योंकि मैं चाहती हूं हम चाहते हैं हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे, किसी प्रकार के दुर्विचार नहीं आए, और अगर आए भी तो वो कट करके वापस से सद्विचार में कन्वर्ट हो जाए. तो ध्यान होता है सद्विचारों की कंटिन्यूटी. 24 आवर्स में सद्विचार बने रहे अपने, और किसी समय दुर्विचार आए भी तो हम अवेयरनेस से, कॉन्सेंट्रेशन से, वापस से अटेंशन से उसको चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके सद्विचारों में वापस आ जाएं. ये होता है ध्यान. ध्यान को, ध्यान से अपने एनर्जी का, अपनी बॉडी का, अपने सोल का जो पावर होता है वो अनकवर होता है. सोल में इन्फाइनाइट पावर और ब्लिस, जिसे हम रोज ही जानते हैं एज अ जैन, कि सोल में पोटेंशियल है भगवान को पा लेने का, वो अनकवर होता है, वो डिस्कवर होता है ज्यादा ज्यादा. ये सारा पोटेंशियल हमारे अंदर है, लेकिन ध्यान से हमें इसमें और ज्यादा पावर मिलता है, बैटरी मिलती है, रिचार्ज हो जाती है हमारी बैटरी अंदर की. ध्यान सभी को करना चाहिए, ऑस्पिशियस वाला. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कभी भी हमारा मेंटल सफोकेशन जो कि हम आए दिन सफर करते हैं, उससे हम बहुत जल्दी उठ सकते हैं. मेंटल सफोकेशन को ये एकदम क्लियर कर देता है. हमारे माइंड में जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस, इन सबको ट्रांसफॉर्म कर देता है वो. अपन थोड़ी देर में थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे 15 मिनट्स का, और उसके पहले मैं आपको चार रिफ्लेक्शंस बताऊंगी. ये रिफ्लेक्शंस आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में, लेकिन अब अपन इनको एक नए ढंग से करेंगे. वो ये है कि एक्सपीरियंस करके इन चीज को फील करेंगे. ये रिफ्लेक्शंस वो हैं जो कि हमें दिशा देगा किस तरह से उस मेडिटेटिव फेज, जो कंटिन्यूटी ऑफ गुड थॉट्स, कंटिन्यूटी ऑफ जॉय ऑफ द सोल में हमें बांध करके रख सके। तो प्रश्न हमारे सामने ये उठता है, क्या हम सच्ची में उठने को आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? एक मैनेजमेंट का फेज होता है, व्हेनेवर द कार इज रोलिंग बाय इटसेल्फ बी श्योर इट इज गोइंग डाउनहिल। उसी प्रकार से हमारे जीवन जब हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो अपने आप एक फ्लो में बहता जाता है, तो फिर क्या हो रहा है? इट इज गोइंग डाउनहिल। ध्यान के माध्यम से उसको सबसे पहले तो अपन रोक लगा देंगे कि वो नीचे तो नहीं गिरे, और फिर हमारी चॉइस है कि हम उस पोटेंशियल से अपने आप को ऊपर बढ़ाएं कि नीचे गिराएं। तो प्रश्न हमारे साथ ये उठता है, हम क्या आज बढ़ने के लिए तैयार हैं? दूसरा प्रश्न ये है, डू वी रियली रियलाइज दैट देर इज लॉट ऑफ मिजरी एंड सफरिंग इन आवर लाइफ इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। कल ही मेरे से किसी ने प्रश्न करा था कि मेरे को तो लगता है मेरे को 24 घंटे पॉजिटिव थॉट्स ही रहते हैं, मेरे को लगता है कि 24 घंटे मेरे अच्छे विचार ही चलते हैं और मैं बहुत खुश रहता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिनको मैं ट्रांसफॉर्म करूं मेडिटेशन के माध्यम से। तो बहुत मार्के की बात उन्होंने कही है यहां पर, किस प्रकार का प्रेशर उनको 24 घंटे बना हुआ है इसको अपन रियलाइज करें, उसका बेस क्या है, उसका रूट क्या है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो मां को बहुत वेदना होती है, 2 घंटे की वेदना निरंतर होती रहती है। जिस क्षण वो बच्चा पैदा हो जाता है उसकी सारी वेदना कहां गई? सब गायब हो गई, सब हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गई। तो हमारी जो हैप्पीनेस है, आज की जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, उसका बेस ये सफरिंग है जिसे हम भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारे सद्विचार हमेशा बने हुए हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं कि कोई ना कोई सफरिंग से उठ करके हमने उस जो सफरिंग हुई थी उसको हम भूल चुके हैं, और हम सोचते हैं ये हमारा माइंड की थिंकिंग है कि 24 घंटे हम अच्छे ही हैं, अच्छे ही बने हुए हैं। पुराने जमाने में जब गुरु अपने शिष्य को एजुकेशन देता था तो किसी किताबों के माध्यम से या किसी पढ़ाई के माध्यम से नहीं, सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर देता था। वो सेल्फ एक्सपीरियंस कैसे देता था? मानसून का सीजन है, बहुत प्यारा सा एक रेनबो निकला हुआ है, चारों तरफ सुनहरे क्लाउड्स हैं, अलग अलग रंग बिरंगे। वो अपने शिष्य को कहता है, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ वॉच करो इस ब्यूटी को जो तुम्हारे चारों तरफ है। आप देखिए वो किस तरह से शिक्षा देता है अपने शिष्य को सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर। वो कहता है कि क्लाउड्स को देखो, उसके रंगों को देखो। वो कहते हैं कि रेनबो को देखो, ऑब्जर्व करो उसकी ब्यूटी को देखो, और उसके बाद में सब कुछ भूल जाओ और आंखें बंद कर लो। शिष्य एग्जैक्टली इसी प्रकार करता है, वो चारों तरफ निहारता है, सुंदर सा रेनबो दिखता है, उसके कलर्स देखता है, वो क्लाउड्स देखता है, अलग अलग रंग के बने हुए हैं, कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है उसके फॉर्म्स को देखता है, वो चारों तरफ की सीनरी को देखता है, ब्यूटी को देखता है, और आंखें बंद करके सब कुछ भूल करके वो बैठ जाता है। शाम का वक्त था, 2 घंटे बाद गुरु उसको उठाते हैं, पूछते हैं अब तुम्हें क्या दिखता है? चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, वो जैसे ही आंखें खोलता है तो बोलता है अब मुझे कुछ नहीं दिखता। तो गुरु उससे प्रश्न करते हैं, ये सब चीजें कहां गई जो तुम्हें दिखती थी? क्या आप लोग मुझे आंसर करेंगे इसका, ये सब चीजें कहां गई जो मुझे जो उसे दिखती थी उस समय? फिजिकल अपीयरेंस वहां पर नहीं है, ये चीज इनसाइट एकदम से उस शिष्य को स्ट्राइक होती है। वो ये नहीं कह पाता कि वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि वो भी जानता है कि अर्थ रोटेट हो चुका है, जिसके माध्यम से अभी जो सूरज उगता था वो ढल गया है और वो अब कहीं और उग रहा है, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि सूरज खत्म हो गया। वो जो रेनबो के मॉलिक्यूल्स एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसी और पार्टिकल के अंदर, तो ये तो नहीं कह सकता कि वो खत्म हो गया है। इस प्रकार का ये रियलाइजेशन हमारे लाइफ में होता है। मेडिटेशन एक एक्सपेरिमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई आपको मेडिटेशन सिखाता नहीं है, आपकी जिंदगी ही, हमारी जिंदगी ही हमें मेडिटेशन सिखाती है। हमारे जो डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं बाहर, हमारे सेंसेस कहां खुले हुए हैं, बाहर, हमारी आंखें बाहर खुली हुई हैं, कान बाहर खुले हुए हैं, सब बाहर की चीजों को देखते हैं और सुनते हैं। ये सब हमारे को वॉच जब हम करेंगे प्रॉपर ढंग से, तो इस वॉचिंग के माध्यम से हमें क्या इंसाइट, क्या इनर परसेप्शन मिलेगा, वो हमें ध्यान तक पहुंचाएगा। इस मेडिटेशन को मैंने नाम दिया है द चेंजलेस बीनीथ द चेंजेस। ये हमारी फिजिकल आई है, फिजिकल आंख है, जो देखती है कि कुछ अपीयर हुआ है और कुछ डिसअपीयर हो गया है। इनर परसेप्शन जानता है कि जो है कुछ है जो हमेशा बना हुआ है। उसी प्रकार से एक पेड़ को, वृक्ष को देखिए आप, वृक्ष को देखेंगे तो एक लीफ मुरझाती हुई दिखती है, क्या उसी समय वाइब्रेंट एनर्जी को लिए हुए एक नई लीफ दूसरी किसी शाखा पर उगती हुई नहीं दिखती? बाहरी रूप से हमें ये चेंज दिखता है, कुछ खत्म हुआ, कुछ पैदा हुआ। व्हाट इज द फोर्स? स्टिल देयर इज अ फोर्स व्हिच इज बिहाइंड ऑल दिस। एक लाइफ फ्लो है जो कि सीड का है, जो कि उस वृक्ष का है, वही लाइफ फोर्स हमारे सोल का है। और ये सोल अपने इनर परसेप्शन से क्या जान सकता है कि मेरे बाहर जो अपीयरेंसेस हैं और जो डिसअपीयरेंसेस हैं वो सब नेचर की, प्रकृति का खेल है, वो मेरे से रिलेटेड नहीं है। मेरे से रिलेटेड वो कब हो जाता है? जब उसे मैं अपना मान लेता हूं। जब मैं किसी व्यक्ति को अपना मान लेता हूं तो वो पैदा होता है, तो उसके पैदा होने में मुझे हैप्पीनेस मिलती है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके डिस्ट्रक्शन में मुझे अनहैप्पीनेस होती है। तो मेडिटेशन का पॉइंट ये है टू ऑब्जर्व एंड टू वॉच हाउ वी आर इन्वॉल्व्ड इनटू दीज प्लेज ऑफ लाइफ एज अ स्पेक्टेटर, एंड देन by watching this outside world to come within us, that there is still something which is permanent, which is the life force within me. The point of meditation is to look at the changeless which is beneath all the changes which is happening around. Ek drishti aisi jo ki divide kar sake क्या परमानेंट है और क्या इम्परमानेंट है, क्या टेम्पररी है। ये जो दृष्टि है ये अपने आप मेडिटेशन का एक पॉइंट है, जिसे हम थोड़ी देर में करेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं, आपसे शेयर कर रही हूं, वो किसी प्रकार के इल्यूजन का है। अपन आइडेंटिफाई करें वो इल्यूजन क्या है। Aren't we trying to live this life to protect us? अपन मनी गैदर कर रहे हैं, स्टेटस गैदर कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं। क्या बेसिस है इसका कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके? Am I right? We are trying to gain protections around us. We feel कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ हमारे लिए बहुत केयर करती है और वो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जब मैं किसी इलनेस से सफर करता हूं तो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मेरे आसपास बैठे रहते हैं, एम आई एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एट दैट टाइम? Are those people around me able to protect me from the sufferings of the disease I am going through? They can only share your pain, but is really that pain shared? यू आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट पेन. क्या मैं खुद दवाइयों के माध्यम से, सपोज कोई दवाई भी वर्क नहीं करती ऐसी डिजीजेस पर, वो भी फेल हो जाए, तो क्या वो दवाई है ये शरीर भी मेरी मदद कर पा रहा है मेरे जिंदा रहने में, मेरी सफरिंग को दूर करने में? तो वो नहीं रह पाता. सो रियलाइजेशन क्या होता है? ये वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस है. ये वो एक्सपीरियंस हमारा सबका है, मेरा या आपका अकेले का नहीं, सब लोगों का ये एक्सपीरियंस है जो कि हमें वर्ल्ड में वॉच करने से मिला है. इस एक्सपीरियंस का सीड पॉइंट क्या है? मेरे को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ना मेरा फैमिली मेंबर और ना ही कोई मेडिकेशन. तो फिर मैं कहां जाऊं? लेट मी टेक द ड्वेलिंग ऑफ माय ओन लाइफ फोर्स व्हिच इज इनसाइड मी. दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई कैन फील फियरलेसनेस. ये पॉइंट ऑफ सीड पॉइंट ऑफ मेडिटेशन है. सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये सब मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? क्या मैं किसी चीज से अफ्रेड हूं? क्या मुझे किसी चीज का फियर है जिसके कारण से मुझे ये प्रोटेक्शन अपने आसपास बिल्ड करना पड़ रहा है? किसके लिए? द आंसर इज ईगो. टू प्रोटेक्ट आवर ईगो विच इज अ सुपरफिशियल आई एंड द रियल आई विच इज इनसाइड मी इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव मी ट्रू प्रोटेक्शन. दिस इज अ पॉइंट ऑफ मेडिटेशन. सेकेंड पॉइंट ऑफ मेडिटेशन दैट माई प्रोटेक्शंस आर नॉट रियल. एंड अ वेरी डीप इंसाइटफुल रियलाइजेशन इज आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट. मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेरी फॉल्स बिलीफ है. जब मैं उन पर डिपेंडेंट हो जाता हूं और वो लोग मेरी मदद नहीं कर पाते तो क्या होता है? मुझे सफरिंग होती है, मुझे पेन होता है कि क्यों मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है. उस सफरिंग से, उस तारतम्यता से, उस ऊपर और नीचे बहते हुए फ्लो से मुझे एक सम लेवल पर आना है जहां पर मैं खुद ही अपने आप की जॉयफुल स्टेट को मेंटेन कर सकूं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्फ हीलिंग. व्हेन आई एम श्योर ऑफ माय सेल्फ, आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम विद इन एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस. लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट ऑफ मेडिटेशन. इसका नाम मैंने दिया एंड ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द साइकिल. एक साइकिल है हमारे आसपास सर्कमफ्रेंस में जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रही है. वो साइकिल क्या करती है? दिन भर में आप ऑब्जर्व करो तो अपने मूड्स, सुबह जो मूड है, शाम को क्या वो मूड रह पाता है अपना मेंटेन्ड? कोई ना कोई बाहर सर्कमस्टांसेस, घर में झगड़ा, कुछ ना कुछ लेकर के वो हमारे मूड का फेस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक. क्या हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारे उस मूड को डिस्टर्ब नहीं कर सके? कुछ क्षणों में हमें लगता है मुझे तो हेवन मिल गया और कुछ क्षणों में मुझे लगता है कि आई एम गोइंग थ्रू अ लाइफ ऑफ हेल. ये सब क्या है? इन फ्लक्चुएशंस को मैं किस तरह से एक लेवल पर मेंटेन कर सकूं कि आउटसाइड सर्कमस्टांसेस मेरे को आकर के डिस्टर्ब नहीं कर सके? दिस इज द पॉइंट ऑफ एनालिसिस. द मोमेंट आई विल एनालाइज, द मोमेंट आई विल डिफरेंशिएट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल, आई विल कम बैक टू दैट फ्लो ऑफ जॉयफुलनेस, to that flow of non-fluctuation of my moods. No one can change my mood. देखिए कितनी सेफ्टी मिलती है, कितना प्रोटेक्शन मिलता है अपने को इस थॉट से. थ्रू वॉचिंग अपन जब वॉच करेंगे तो अपन लर्न करेंगे कि ये जो अप्स और डाउन्स लाइफ के हो रहे हैं ये मुझे सीरियसली लेना ही नहीं है क्योंकि ये मेरे ही स्टेट ऑफ जॉयफुलनेस को, मेरे ही स्टेट ऑफ बींग को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी शांति को, पीसफुलनेस को भंग कर रहा है। मैं क्यों इन चीजों के प्रति इतना सीरियस हूं? मैं क्यों अपनी एनर्जी को टेम्परेरी रूप में इन सबको दे करके लूज करूं? मैं गुस्सा कर रहा हूं, हम गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमने हमारी एनर्जी को लूज कर दिया। इज इट पॉसिबल फॉर मी नॉट टू बी एंग्री एंड स्टिल मेंटेन दैट जॉयफुल स्टेट? दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड रियलाइजेशन। लेट इज गो टू द थर्ड, टू द फोर्थ पॉइंट। ये जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, जहां पर इस साइकिल का जो कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर शाम तक अप्स एंड डाउन्स लाइफ में है, उसको ये खत्म करती है। ये अपने को जो यूजफुल डिसीजंस होते हैं लाइफ के अंदर, उसको बनाने में बहुत मदद करती है। दिस विल मूव अस अवे फ्रॉम इनडिसीजिवनेस। दिस विल ऑल्सो मूव अस अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिजीज हार्नेसिंग इन आवर बॉडी। जब मेरे मूड्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, मेरे इमोशनल लेवल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। उस इमोशनल स्टेट को, देयर इज अ न्यू लाइन ऑफ मेडिकेशन दीज डेज व्हिच इज नोन एज साइकोसोमैटिक डिजीजेस। इसमें ट्रीटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशनल लेवल्स। एनी डिजीज व्हिच इज कमिंग एक्सप्रेसिंग ऑन इट्स फिजिकल लेवल इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन ऑफ सम और द अदर काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉकेज। जब मेंटल और इमोशनल हमारी स्टेबिलिटी रहेगी, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं बनेगा। ब्लॉकेज नहीं बनेगा तो हो सकता है जिन चीजों से अभी तक मुझे सरदर्द होता था शाम तक, वो खत्म हो जाएगा। सरदर्द कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लॉकेज है किसी प्रकार की एनर्जी का, जो कि मेरे आज्ञा चक्र में या फिर मेरे सहस्रार में आकर के बैठ जाती है। थर्ड पॉइंट ऑफ मेडिटेशन को अपन समझें, इसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी। कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूं किसी पर, मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हमें रियलाइज करना है, जिसे हमें फील करना है। तो प्रश्न यह है कि बाहरी जो चीजें रखी रहती हैं, जो चीजें हमने हमारी मान रखी हैं, क्या उन चीजों में इननेट कैपेसिटी है, स्वयमेव कैपेसिटी है कि वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले? क्या ये पानी जो यहां रखा हुआ है, ये नारियल जो यहां रखा है, इसमें अपने आप कैपेसिटी है कि मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले? ये किसी भी चीज में नहीं होती। ये जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, इनमें किसी में भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो फिर क्या चीजें जो अट्रैक्ट करती है? लेट्स कॉल दैट इनविजिबल अटैचमेंट विद द थिंग्स। मेरे विचार कि वो चीज मेरे लिए अच्छी है, इसके कारण वो मुझे अट्रैक्ट करती है। एडिक्शन और कुछ नहीं, यही है। एडिक्शन से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का नहीं होता, एडिक्शन विचारों का भी होता है, हैबिट्स का भी होता है, जो हम दिन भर में हैबिट्स हमारी बना लेते हैं। अच्छा, हैबिट्स एक और चीज आप ऑब्जर्व करिए, ये अनकॉन्शियसली होता है। अनकॉन्शियसली हम उसके आदि होते जाते हैं, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब रियलाइज करते हैं, अब मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकता। जो ट्रू सीकर्स हैं टूवर्ड्स मेडिटेशन, ध्यान के, अपनी सेल्फ फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जी के जो ट्रू सीकर्स हैं, वो लोग इस डिफरेंस को पहचान सकते हैं कि व्हाट इज सही में ध्यान और गलत ध्यान, जिसे अपन मेयर हाई बोलते हैं। जैसे एक सोडा वाटर होता है, उसको आप हिलाओ तो कितना ज्यादा हाई प्रोड्यूस होता है, एक हाई पर पहुंचता है, और पांच मिनट में बाद देखो आप तो वो वापस से जाकर के सेटल हो जाता है। दीज आर वॉट एडिक्शंस आर, हैबिट्स आर, चाहे वो धार्मिक एक्टिविटीज हो, चाहे वो पूजन की एक्टिविटी हो जो कि अनकॉन्शियसली की जा रही हो, मुझे किसी कुछ मोमेंट के लिए एक हाई पर पहुंचा देती है, और फिर उस हाई से मैं देखता हूं कि जब मैं घर में घुसा हूं तो मैं वापस से वैसा का वैसा ही हो गया हूं। दिस इज जस्ट अ मेयर हाई, दिस इज नॉट प्रॉपर ध्यान, दिस इज नॉट इवन स्पिरिचुअलिटी। धार्मिक एक्टिविटी हमको किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी तक नहीं पहुंचा रही है. छोटे छोटे हैबिट्स हमारे हमको और ज्यादा ग्रेविटी पुल से धरती पर अर्थ पर बांध करके रख रहे हैं, हमें अपलिफ्ट नहीं होने दे रहे हैं. देयर इज अ सेइंग, व्हेन यू एक्ट देयर इज मूवमेंट, बट व्हेन यू रिएक्ट यू स्टंबल. हम गिर जाएंगे अगर हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम जब एक्चुअली कॉन्शियसली अवेयर होकर एक्ट करेंगे तो दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द लिफ्टिंग. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एडिक्शंस. ये एडिक्शंस के कारण हम क्या करते हैं, बाहरी चीजों पर ही ब्लेम कर देते हैं. पर ये उत्पन्न कहां से हो रहा है? ये वस्तु नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं ही हूं जो उसे चाह रहा हूं उससे अट्रैक्ट होना, मेरी किसी कमजोरी के कारण. तो अपने को दोनों चीजें देखनी है, क्या मेरा एसेंस है और क्या मेरा एडिक्शन है. ये है पॉइंट ऑफ मेडिटेशन. उस मोमेंट में जब मैं देखूं, सिर्फ वॉच करूं कि ये मेरा एसेंस है और ये मेरा एडिक्शन है, दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प अस इन टू मेंटेनिंग द जॉयफुल स्टेट. द मोमेंट वी पुट लाइट इन टू डार्कनेस, व्हाट हैपेंस? क्या डार्कनेस धीरे धीरे गायब होता है? इंस्टेंटेनियसली गायब हो जाता है डार्कनेस. उसी प्रकार से जब जैसे ही मैं एक अवेयरनेस का पॉइंट, सिर्फ देखने का पॉइंट उस विचार पर, उस चीज पर डालूं, तो जो बुरा विचार है वो अपने आप क्लाइमेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सद विचारों में. एडिक्शन से हट करके मैं अपने एसेंस को पहचान सकूंगा, और वो इतना स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस होता है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए. ध्यान ऐसी चीज नहीं है जो रोज एक घंटा में बैठ करके प्रैक्टिस करूं कि प्रैक्टिस कर करके मेरे को शायद एनलाइटनमेंट हो, ऐसा नहीं होता. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है यह. ध्यान का एक और बहुत अच्छा पॉइंट यह है कि जब जैसे जैसे आप इस प्रकार के 24 आवर्स के मेडिटेशन में ध्यान में एंटर होंगे, दैट मीन्स 24 आवर्स के अपने ही जॉयफुल स्टेट में आप एंटर होंगे, अपन एंटर होंगे, तो अपनी एक एनर्जेटिक बॉडी होती है जो कि प्योर होने लगती है. दिस इज नोन एज ऑरिक बॉडी. एक प्रकार का हेलो हमारी बॉडी में बनता रहता है, बन जाता है, जो प्योरिफाइड होता है. एज ए प्राणी हीलर आई स्कैन दोज ऑरास. वो ऑरास को मैं स्कैन करती हूं. जब मैं कभी किसी महर्षि को मिलने जाती हूं, मैंने पहली बार विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करे थे सिंदूर कूट में, उस पर्टिकुलर एरिया में उनके ऑरा में एंटर होते से ही आई कुड सी अ गोल्डन फ्रेम ऑफ ऑरा अराउंड हिम विच वॉज नथिंग बट अ प्योरिफाइड एनर्जी ऑफ द सोल. एक ऐसी स्टेट में वो जहां पहुंचे हैं जहां पर एक जॉयफुलनेस कंटिन्यूस बनी हुई है जो सुबह शाम के अप्स एंड डाउन से डिस्टर्ब नहीं कर पाती. सुबह शाम के हमारे रिलेशनशिप्स के बीच में जो तनाव है उससे हमें गिरा नहीं पाती, वो हमारी मेंटेन रहती है. हमें वॉच करना है कि ये एडिक्शन क्या है और क्या इस एडिक्शन के बिना मेरी लाइफ एम्प्टी है. क्या मैं इस एडिक्शन के बिना मिजरेबल और हेल्पलेस फील करता हूं, चाहे वो विचारों का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर का हो, सब एडिक्शन है. क्या वो मेरे पास अगर नहीं रहेगा तो मैं हेल्पलेस फील करता हूं? तो इस तरह से ये हम रियलाइज करें हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बाहरी चीजों पर. एक एग्जाम्पल आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब अपन लोग पैदा हुए हैं उस समय हमें क्या चीज की जरूरत थी? क्या उस समय हमारे फैमिली की जरूरत थी? क्या उस समय हमारे को किसी कार की या किसी घर की या किसी सेफ्टी की जरूरत थी? उस समय हमें सिर्फ एक ब्रेथ की जरूरत थी. तो फिर मैं आज इस पॉइंट पर क्यों समझता हूं कि इन सब चीजों के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा, कि वो चीज अगर मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मेरा लाइफ हेवन हो जाएगा, कि वो चीज मेरी लाइफ से चले जाएगी तो मेरी लाइफ हेवन हो जाएगी? ये सिर्फ एक इल्यूजन है. तो पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज ओनली टू, ये नहीं कह रही हूं कि अपन अपने आप को इल्यूजन से अपलिफ्ट कर लो. पॉइंट इज जस्ट टू सी, जस्ट टू वॉच कि मेरा एसेंस ये है, रियल ये है, अनरियल ये है, एडिक्शन ये है. जस्ट टू वॉच इट, दैट इज द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन. और वॉच करने के लिए ज्यादा अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं होती. सिर्फ एक सोच जो कि इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफॉर्म कर देगी हमको सफरिंग से जॉयफुलनेस में. तो होता यह है कि हमको एक्सेप्ट करना है वर्ल्ड को एज इट इज. पर होता क्या है कि हम उससे ऑब्सेस हो जाते हैं, दुनिया से हम ऑब्सेस हो जाते हैं. फिर अपनी कमजोरियों को भी उसी पर ब्लेम करते हैं, अपनी अच्छाइयों को भी उसी पर डालते हैं. इस ऑब्सेशन को हटाकर, इस इंडल्जेंस को हटाकर के हमको सिर्फ वॉच करना है, अपनी लिंक नहीं बनानी है उसके बीच में. जब हम कहते हैं आई एम, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस. पर जब हम कहते हैं आई वॉन्ट, देन द डिजायर कम्स, देन द अटैचमेंट्स कम, देन द डिटैचमेंट्स कम, एंड दैट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अवर पीस ऑफ माइंड. इस थॉट के साथ में वर्क करेंगे कि मैं अकेला हूं, हम अकेले हैं. हम जब आए थे तब अकेले आए थे, हम जब जाएंगे तब अकेले जाएंगे. तभी हम अकेले अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे, अपने एडिक्शंस, अपने हैबिट्स, अपनी थॉट एक्टिविटीज के बिना हम अकेले खड़े हो सकेंगे. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि आपका पूरा सेपरेशन हो गया दुनिया से. अगर मैं ये कह रही हूं कि अकेले हैं तो अकेले का मतलब अकेलापन नहीं है. यहां पर अकेलापन तो कोई व्यक्ति जनरली आजकल फील ही नहीं करता है, क्योंकि अकेले भी वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार का विचार उसका साथ जरूर दे देता है. तो अकेलापन तो होता ही नहीं व्यक्ति के अंदर. हम अकेले हैं इस दुनिया में. जितने लोग हैं सुबह से शाम, जिन लोगों के साथ में मेरा इंटरेक्शन होता है, वो भी अपने आप में अकेले हैं, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है. इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से वी आर नॉट गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड पीपल अराउंड अस बाय सेइंग दैट आई एम अलोन, बट वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग टू देम एट अ वेरी हायर लेवल. This will help only us, and it has been medically seen these thoughts of self-sufficiency will make us a very healthy person. Healthy from thoughts, healthy from mind, healthy from actions. From every point we will become physically very healthy with this thought. Last point, we don't have to feel that we are fearful. जब हमको फील होता है कि हम अकेले हैं, थॉट ही हमको क्या करता है, एक फियर बनाता है कि सच्ची में मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं करने वाला है. दिस इज क्रिएटिंग अ फियर इन अस. सो दिस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू गिव अस फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर. इसे सिंह वृत्ति कहते हैं जैन धर्म के अंदर. सिंह वृत्ति को मैं एक्सप्लेन करूं आपको. शेर जानता है कि वो जंगल का राजा है. शेर हमेशा अकेला घूमता है. क्यों? क्योंकि उसे किसी प्रकार का डर नहीं है और वो ये जानता है कि वो जंगल का राजा है. उसी प्रकार मैं जानूं कि मैं विथ आवर कंप्लीट फुल पोटेंशियल ऑफ द सोल हैज एवरीथिंग इन माई सेल्फ. I don't have to depend on my addictions. I don't have to depend on my family, my wife, my kids, anyone to feel, get the feeling of self-sufficiency. Self-sufficiency is inside me. This is the state of fearlessness, जिसको सिर्फ पहचानना है हमें, सिर्फ watch करना है. और वो watching itself अपने को वो flow of life में, joyful state जो है जिस life का, उसमें ला करके रख देगी. तो अपन थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे अभी, हाल 15 मिनट का. अच्छा, मेडिटेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो अपना मन जो इधर उधर विचरण कर रहा है उसको थोड़ा सा अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है जो मैं आपको बताऊंगी, आप इसको बहुत ईजिली अपने आप कर सकते हैं। ये मेडिटेशन ऐसा है जो सुबह शाम आप बिना चाहे चॉइसलेस होकर के भी कर सकते हो, एफर्टलेस होकर भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक रियलाइजेशन चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि हम हमारे आसन को प्रॉपर कर लें, तो थोड़ा सा हिलडुल लें, अपने आप को कंफर्टेबल बना लें, एक हल्की सी मुस्कान रखें चेहरे पर, अपने आप को किसी भी प्रकार के टेंशन से बस रिलीज होता पाएं। आसन एक्चुअली में जो मैं लोगों को बताती हूं वो है अरिहंत मुद्रा। अरिहंत मुद्रा आप लोगों ने देखी होगी, वो इस प्रकार की बनी होती है। इस प्रकार की कभी किसी ने सोचा कि क्यों है हमारी सिर्फ भगवान की मुद्रा इस प्रकार की क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है या ऐसी क्यों नहीं है? किसी भी प्रकार की आप मुद्रा देखो, ऐसी भी देखो, तो क्या हो रहा है यहां पर, हमारे एनर्जी चैनल्स खुल गए हैं। ये जो एनर्जी मेरे सेवन चक्रास में बैठी हुई है, जैसे ही मैंने अपने हाथ खोले, इट हैज बीन सीन क्लियर वॉलेंटली कि अपनी उंगलियों के माध्यम से वो बाहर जाती है। जब अपन ये वाली मुद्रा बनाते हैं तो भी अपने हैंड चक्रास से, इसके साथ में पद्मासन बनाओ विच इज अगेन अ क्रॉस्ड लेग पोजिशन, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन क्लोजिंग एंड नॉट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। एज सून दिस एनर्जी क्लोज गेट्स क्लोज फ्रॉम बीनीथ एंड फ्रॉम अप, पैरों से और हाथों से, तो एक डायनेमो का प्रिंसिपल होता है। डायनेमो में क्या होता है, हाई रिवोल्यूशन हाई रोटेशन शुरू हो जाता है एनर्जी का। उसी प्रकार जैसे अपन ये क्लोज करते हैं तो अपने अंदर सेंटरिंग ऑफ द एनर्जी का एक हाई रोटेशन शुरू हो जाता है, जो कि कंटिन्यूअस सेवन चक्रास के माध्यम से ऊपर नीचे फ्लो होता रहता है, जो कि किसी प्रकार से बाहर डिसिपेट नहीं होकर के हमारे ही अंदर हमारे ही सोल की एनर्जी को और ज्यादा अनकवर करता है। दिस इज वन पॉइंट। दूसरी चीज, जब हम इस मुद्रा में बैठ जाएंगे तब हम आंखें बंद करेंगे और अपने विचारों को या अपने दिमाग को अपने अंदर लाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। तीसरी चीज, अपन ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण अपने सातों एनर्जी सेंटर्स को पूरी तरह से खोल देगा। ओम की एनर्जी नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रैवल करनी चाहिए, फ्रॉम आवर बेसिक चक्र मूलाधार चक्र से लेकर के एक एक चक्र से ऊपर ऊपर अनाहत, फिर उसके ऊपर सहस्रार तक एंटर होनी चाहिए। एक पूरा डिफरेंट प्रोसेस है, मैं किसी और दिन आपको ये बताऊंगी। खैर, अभी हाल अपन सिर्फ एक ओम को उच्चारण करेंगे, जिसके कारण अपना पूरा सेंटरिंग अपने अंदर हो जाएगा और फिर थोड़ी सी ब्रेथ पर अवेयरनेस डालेंगे। मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, अब ऐसे वैसे इस चीज को करेंगे। आप लोग आंखें बंद कर लें, कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में आ जाएं, हिलडुल लें थोड़ा सा, थोड़ी देर अपन बैठेंगे 15-20 मिनट इसी स्टेज के अंदर। आंखें बंद कर लें, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, सब लोग मुद्रा अरिहंत देव की बना लें। लेफ्ट हैंड को नेवल के ऊपर रखें और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें। बहुत ज्यादा स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड फील करें। नेवल के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं तो ना रखें, फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड, स्ट्रेन्ड नहीं हुए। अपने आप को टिका लें, रीढ़ की हड्डी टिकानी है अभी हाल आपको टिका लें। फील एज कंफर्टेबल एज यू आर, कंप्लीटली रिलैक्स योर सेल्फ। जो ध्वनि हो रही है इस कमरे के बाहर उसको सुनने की कोशिश करें। सड़क पर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, बाहर की आवाजें हैं उसे सुनें। कमरे, इस कमरे के भीतर आए। कमरे में जो ध्वनि चल रही है उसको सुने। एक म्यूजिक चालू है इस कमरे के अंदर, उसको सुने। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर आराम से सिर्फ सुने। अब ध्यान अपनी आती जाती सांस पर लगाएं। किस तरह से मेरे अंदर सांस आ रही है, किस तरह से धीरे धीरे ये सांस मेरे से बाहर जा रही है। मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूं, हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं कैसे सांस आ रही है और जा रही है। किसी प्रकार का प्रयास नहीं है, मैं अपनी सांस को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। जस्ट वॉच, कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ। मेरे अंदर सांस आ रही है, मेरे अंदर से सांस बाहर जाती है। इस प्रकार मैंने पूरा ध्यान अपने ही शरीर के अंदर कर लिया है। एक सिचुएशन को मैं इमेजिन करूं जहां पर कोई प्रिय व्यक्ति जो मेरे लाइफ में आया था और अब वो नहीं रहा, या कोई प्रिय वस्तु जो टूट करके गिर गई है या डिस्ट्रॉय हो गई है या अब मेरे पास नहीं रही। ये सिचुएशन आपकी आंखों के सामने आ गई है। ये सिचुएशन को मैं देख रहा हूं होते हुए मेरी आंखों के सामने। अब तक मैं इन्वॉल्व्ड था उसके अंदर, अब मैं इन्वॉल्व्ड नहीं हूं, सिर्फ वॉच कर रहा हूं। जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी ही दुनिया से लिया है, मैं देख रहा हूं किस तरह से हम उनके इतने प्रियजन थे, वो हमारे प्रियजन थे, वो चले गए हैं और हम उनके जाने से दुखी हैं। उस समय मैं भी उनके आने से खुश था और उनके चले जाने पर दुखी था, लेकिन ये मैं कौन है? वो जो अभी इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ध्यान दें कि हम उसे होते हुए देख रहे हैं। ये जो चीजों का आना है और चले जाना है, यह सिर्फ एक लाइफ के आसपास का गेम है, एक खेल है जिसे मैं होते हुए आज देखता हूं। ये सिर्फ ओशन के दो वेव्स हैं, दो लहरें हैं। एक लहर खत्म हो जाती है, दूसरी लहर उठ करके ऊपर इमर्ज हो जाती है, लेकिन ओशन वैसा का वैसा बना रहता है। ये जो चेंज होते हुए मैं देख रहा हूं, मैं इसे रेजिस्ट नहीं करता। हम टोटली एक्सेप्ट कर रहे हैं ये जो क्षणभंगुरता है, ये जो चेंज ऑफ फॉर्म है जो खत्म हुआ है, शायद वो कहीं किसी और रूप में अभी खुशी होकर के जन्म ले रहा है। इस चेंज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैं डीपर रियलाइज करूंगा, मैं फील करता हूं कि मेरे भीतर एक लाइफ फोर्स है जो चेंज नहीं होती। हमारे बाहर जो हुआ वो चेंज हमें दिखता है, पर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं दिख पा रहा बाहर से, पर मैं अंदर देखूं तो वो चेंज नहीं, वो परमानेंस है, मेरी लाइफ फोर्स, मेरी सोल की एनर्जी का। हल्की सी मुस्कुराहट, ये और कुछ नहीं, पीस है, जॉयफुलनेस है, जो मेरे भीतर है, जो बाहर से आवृत नहीं है। अपना ध्यान धीरे धीरे आती जाती सांसों पर लगाएं। कैसे बैठे हैं उसे आंखें ही बंद करके देखें। कहां बैठे हैं उसे देखें, कैसे बैठे हैं उसे देखें। आती जाती सांस पर वापस ध्यान दें। कुछ ऐसा भाव है मेरे अंदर जो हमेशा बना रहता है, उसे लव कहते हैं। और लव ही वो रिलेशन है जो कि एक सोल को दूसरे सोल से कम्युनिकेट कराता है। एक और छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करें आप, जहां पर मैं बीमार हूं। हमारे घर के सभी जन, सभी प्रियजन, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे घर पर, हमारे डॉक्टर, सब जने हमारे आसपास खड़े हुए हैं। मुझे बहुत सफरिंग हो रही है उस पेन से, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं मुझे किसी भी प्रकार से मदद नहीं दे पा रहे हैं, मुझे मेरे दर्द से उबार नहीं पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों पर मैं आज तक डिपेंडेंट था, वो लोग भी मुझे किसी भी प्रकार से मेरे इस सफरिंग से उठा नहीं पा रहे। वो लोग अपने आप में ही हेल्पलेस हैं, तो वो किस प्रकार से मुझे सिक्योरिटी दे सकेंगे, किस प्रकार से मनी स्टेटस मुझे सिक्योरिटी दे सकेगा, वो तो सब नष्ट हो जाने वाला है। अब मैं अपनी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ये सब बाहर की जो क्षणबंधु डिपेंडेंसी है उनसे हटाकर अपने आप को कनेक्ट करता हूं प्योर स्ट्रीम ऑफ लाइफ से, मेरे सोल से। मैं मर्ज करता हूं, मैं उसके अंदर खो जाता हूं, अपने ही सोल के अंदर। बाहर की दुनिया को देख करके मैं अपने ही अंदर आता हूं और अपने ही अंदर मैं एवरलास्टिंग प्रोटेक्शन पाता हूं। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरों पर, मैंने वो निधि पा ली है, वो इंडिपेंडेंसी मेरे ही अंदर थी, अभी तक मैं बाहर खोज रहा था। अपना ध्यान आती जाती सांसों पर दें। किस तरह से हम बैठे हैं, कहां हम बैठे हैं, बस देखें और ध्यान धीरे धीरे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ ब्रेथ पर डालें। फिर से ध्यान दें सुबह से लेकर शाम तक, जिन जिन सिचुएशन से मैं निकला हूं उनके कारण मेरे मूड्स ऊपर और नीचे बहुत जल्दी हो जाते हैं। सुबह मैं खुश था, शाम को आते आते हम सब दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार का चेंज निरंतर होता रहता है, फ्लक्चुएशन मूड्स का निरंतर होता रहता है, लेकिन अब मैं उनके साथ उन्हीं की तरह नहीं हो रहा हूं। अब हम वॉच कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे मूड्स ऊपर और नीचे होते जाते हैं। अलग बैठ करके हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि हम ही थे जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। अगर मैं उनमें इंडल्ज होता हूं, अटैच होता हूं, तो फिर मैं सफर करता हूं, मेरे मूड्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। जब मैं बाहरी चीजों को अपना समझूंगा तो मैं अपसेट हो जाऊंगा, दुखी होऊंगा जब वो मेरे से दूर चले जाएंगी, और खुश होऊंगा जब वो मेरे पास में आएंगी। लेकिन अब मैं अवेयरनेस से, वॉचिंग से, ये जो जाल मैंने अपनी लाइफ के आसपास बुन दिया है उसे तोड़ता हूं। मैं किसी भी प्रकार से अपने आसपास बने हुए उस जाल को प्रिजर्व करने में अब नहीं लगता हूं। इसी तरह से मैं अपनी सफरिंग्स को टोटली ब्रेक कर देता हूं। इस सर्कल ऑफ लाइफ को देखता हुआ कौन देख रहा है उस पर ध्यान दें। हम देख रहे हैं, ध्यान हम तक आ जाए वापस। इन सब चीजों को जिंदगी में आसपास होते हुए हम देख रहे हैं, ध्यान सारा अपने ही भीतर वापस आ जाए। अब मेरी जॉयफुल स्टेट कंटिन्यूअसली बनी हुई है, जो कि अभी तक ऊपर नीचे बाहरी सर्कमस्टांसेस से हो गई थी। मैंने वापस से अपने आप को स्टेबल कर लिया है, अपने मूड्स को स्टेबल कर लिया है। एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर, हम खुश हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपने तक वापस आ गए हैं। अपना ध्यान आती जाती सांस पर, धीरे धीरे सांस मेरे भीतर आती है, धीरे धीरे सांस मेरे भीतर से बाहर आती है। एक छोटी सी सिचुएशन और देखें, जब मैं जन्म लेता हूं, जब हम जन्म लेते हैं तब हमें किसी भी चीज की आसपास जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ब्रेथ की जरूरत होती है कि मैं सांस ले सकूं, इस दुनिया में मैं आ सकूं। मैं अकेला ही आया हूं, मैं अकेला ही हूं। मैं जाऊंगा तो अकेले ही जाऊंगा। हम जानते हैं हम किस तरह से अकेले खड़े हो सकते हैं, बिना अपनी हैबिट्स के, बिना अपने फैमिली मेंबर्स के, बिना किसी प्रकार के एडिक्शन के, सबसे सब भीड़ से अलग होकर के, फियरलेस होकर के, जस्ट लाइक द लायन, जो कि एकदम अकेला और सफिशिएंट होकर के विचरता है, भ्रमण करता है। मैं उसी प्रकार से एकदम फियरलेस होकर के अपने ही सेल्फ को पहचानता हूं और उसी में वॉक करूंगा। सब इस दुनिया में आए हैं इसी सेल्फ सफिशिएंसी को खोजने के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक देखें किन किन लोगों से अपन मिले हैं, जान पहचान के लोग और नहीं जानने वाले लोग, सब लोग एक एक करके हमारी आंखों के सामने आते हैं। देखिए किस प्रकार से सुबह आप अपने फैमिली मेंबर से मिले, बाहर आए किन किन लोगों से मिले, उन सब लोगों को अपने सामने देखें। अब मैं ध्यान देता हूं कि जिस प्रकार से फ्लेम ऑफ लाइट मेरे अंदर बर्न करती है, जिस प्रकार का फियरलेस एटीट्यूड मेरे अंदर है, उसी प्रकार का एटीट्यूड उन सभी व्यक्तियों के अंदर है जो मेरे सामने से गुजरे हैं। वो किसी भी प्रकार से मुझसे नीचे या मुझसे ऊंचे नहीं हैं, मेरे ही बराबर हैं। उन सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूं, उनकी जब आंखों में देखता हूं तो मुझे मेरे ही फियरलेस स्टेट ऑफ द सोल का रियलाइजेशन होता है। इसी प्रकार जब जब हम नए लोगों से मिलें या परिचित लोगों से मिलें, उनके भीतर उनकी कमियां या उनकी अच्छाइयों को नहीं देखें, सिर्फ उनको देखें और उनके अंदर होते हुए अपने ही रिफ्लेक्शन को देखें, उनकी तरफ वैसा ही एटीट्यूड रखें जो मैं अपने साथ में एटीट्यूड रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ देखूं कि मैं हूं, लेकिन मैंने अपने आप को गलती से आइडेंटिफाई रखकर रखा है अपनी फैमिली से, कि वो फैमिली है तो मेरी पहचान है, कि वो गाड़ी है तो मेरी पहचान है, कि मेरे पास में ये ज्वेलरी है तो मेरी पहचान है। लेकिन ये सब चीजें मेरे से भिन्न हैं। मैं अकेला हूं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं टोटली सिक्योर हूं। दुनिया में किसी प्रकार का दर्द नहीं है, दर्द मेरा एक कंफ्यूजन है। दर्द मुझे कोई और नहीं देता, मेरी ही थिंकिंग देती है। लेकिन मैं आज से ये रियलाइज करूंगा कि दुनिया न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हम आज से इस दुनिया को एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड समझेंगे, एक टेस्टिंग समझेंगे, जहां पर हम ग्रो करेंगे, ढलती हुई गाड़ी की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी प्रोग्रेस की तरफ जागरूक रहेंगे और अपने आप को पूरी लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार के ध्यान से मुझे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस उजारुकता मिली है और मैं इमर्स रहना चाहता हूं इसी जॉयफुलनेस के अंदर, जो मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन हम सबको एक जॉयफुल स्टेट के साथ जकड़ करके रखा हुआ है। अब हमारे मूड्स को कोई बदल नहीं सकता, हम पहचान गए हैं। जो हमें बदलते हैं वो वर्थ नहीं है, वो टेम्प्ररी है। प्लेजर्स है, हैप्पीनेस है, वो सिर्फ टेम्प्ररी है। वो मेरे को एक्साइटमेंट देती है, लेकिन मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, हमें सिर्फ जॉयफुल रहने की एक स्थिति चाहिए। धीरे धीरे ध्यान अपनी आती जाती सांस पर दें, एक हल्की सी मुस्कुराहट उस पर जो मैंने अभी पा लिया है, पूरी दुनिया को देख करके एक्सपीरियंस कर करके आए दिन में, रोज दिन में, सुबह से लेकर शाम तक उनसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ताकि मैं अपने ही भीतर के सेल्फ एक्सपीरियंस तक पहुंच सकूं। मैंने अपने सेंसेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया है, यही ध्यान है। मैंने अपने मन के विचरण को देखा है, होते हुए देखा है और अपने आप को इससे अलग कर लिया है, यही ध्यान है जिसने मुझे एक जॉयफुलनेस दी है। ध्यान धीरे धीरे आती जाती सांस पर दें। धीरे धीरे हलन चलन करें, आंखें नहीं खोलें अभी, अपने शरीर को हिला लें, अपनी मुद्रा को हटा लें। बाहर जो मेरे को म्यूजिक सुनाई दे रहा है उसे सुने। धीरे धीरे से हिलडुल लें, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरों पर, अपने हाथ को मसल करके आंखों पर लगा लें। धीरे धीरे आंखें खोल लें। वेलकम बैक फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ जॉयफुलनेस टू दिस आउटसाइड वर्ल्ड, जहां हम और एक्सपीरियंसेस करेंगे। काफी लोगों के चेहरे पर है मुस्कुराहट, कुछ लोग कंफ्यूज भी है शायद। इससे हमें क्या मिला है, जो फ्रूट है मेडिटेशन का, वो ये है एक अवेयरनेस जो कि 24 घंटे अब मेरे साथ बनी रहेगी। अब मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, जो जो मेरे आसपास होता है मैं उसे वॉच करूंगी लेकिन उसके साथ मैं इंडल्ज नहीं करूंगी. दिस अवेयरनेस इज स्पॉन्टेनियस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनर परसेप्शन एंड इनसाइटफुलनेस. सब चीजों के अंदर से चीजों को ग्रहण करें और अपने भीतर आ जाएं. अल्टीमेटली आना वहीं पर है. ग्रोथ एक्चुअल में वही है. बाहरी ग्रोथ कोई मायने नहीं रखती. जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी हमारे लिए, तब जो हम लेकर जाएंगे वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हमारी गाड़ी बंगला या हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे. तो आज से हम ये प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस जॉयफुल स्टेट को हम मेंटेन करके रखें. इसे महर्षि ने मुझे एक वर्ड दिया है एक्सप्लेन करने का, चॉइसलेस अवेयरनेस. इस तरह से ये हमारे अंदर आ जानी चाहिए कि हमें एफर्ट नहीं करना पड़े उसके लिए, लेकिन आज एफर्ट करें ताकि उस एफर्टलेसनेस तक पहुंच सकें. यही ध्यान है. ध्यान वो नहीं है जो आजकल सिखाया जाता है कि बाहरी बंद करें, कि बाहरी किसी एक बिंदु को देख करके उस पर ध्यान लगाएं, कॉन्सेंट्रेट करें. और कि कभी किसी पर्सन से पूछ लो भैया किस बिंदु पर ध्यान लगा रहे हो, तो उनको भी नहीं मालूम कि वो बिंदु क्या है और मैं क्यों ध्यान लगा रहा हूं उस बिंदु पर, क्यों मैं मेडिटेट कर रहा हूं कि मेरे अंदर लाइट आए और लाइट बाहर जाए. ये कुछ मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को किसी दूसरी चीज में एंगेज करना है. और जैसे हम बाहरी अपनी दुनिया किसी और चीज में एंगेज हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी पीस मिली है, लेकिन वो पीस सिर्फ टेम्पररी रहती है. प्रॉपर पीस तो वही है जो 24 घंटे बनी रहे, जो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके. और ये निधि आज आप लोगों के पास में अब है. दिस इज चॉइसलेस अवेयरनेस. तो मैं यहीं पर फिनिश करती हूं.